कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टावक्र श्री श्री माधव चरणारविंद भक्ति प्रधान समझल प्रभुपाद की। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। नामाचार्य श्रील दास ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णविंद की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुन राधा कुन गिरिगोवर्धन की। नवदीप मायापुर धाम की। द्वारकापुरी धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। मथुरा वृंदावन धाम की। वृंददेवी भक्ति देवी तुलसी महारानी की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। हरिनाम संकीर्तन की। समवेत भक्तवृंद की। दाय गौर हरि प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु वाणी श्री प्रभुपाद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಶು ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜೈಸಾ ಕಿ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ವಿದಿತ್ ಹೈ ಕಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಪ್ರಥು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಜೋ ಅಪ್ನಿ ಸಭಾಸದೋ ಕೋ ಉಪದೇಶ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಉಸ್ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ಉಸಿ ಕ್ರಮ ಮೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಪ್ರಥು ಮಹಾರಾಜ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಬತಲಾ ರಹೇ ಹೈ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಜ್ ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಿಮಾ ಬತಲಾಯಿ ಗಯಿ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಆಜ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕರೆಂಗೆ ಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತತ್ವ ಹೈ ಕ್ಯಾ. ತೋ ಶ್ಲೋಕ ಕೋ ಮೇರೆ ಪೀಛೆ ದೊಹರಾಯೆಂಗೆ, ಉಸ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಆಗೆ ಕಾ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರವಣ ಕರೆಂಗೆ. ಅಶ್ನಾತಿ ಅನಂತಃ ಖಲು ತತ್ವಕೋವಿದೈಃ ಶ್ರದ್ಧಾಹುತಂ ಯನ್ಮುಖ ಇಜ್ಯನಾಮಭಿಃ ನ ವೈ ತಥಾ ಚೇತನಯಾ ಬಹಿಷ್ಕೃತೇ ಹುತಾಶನೇ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯ ಪರ್ಯಗುಃ. ಅಶ್ನಾತ್ಯನಂತಃ ಖಲು ತತ್ವಕೋವಿದೈಃ ಅಶ್ನಾತ್ಯನಂತಃ ಖಲು ತತ್ವಕೋವಿದೈಃ ಶ್ರದ್ಧಾಹುತಂ ಯನ್ಮುಖೈಜ್ಯನಾಮಭಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾಹುತಂ ಯನ್ಮುಖೈಜ್ಯನಾಮಭಿಃ ನ ವೈ ತಥಾ ಚೇತನಯಾ ಬಹಿಷ್ಕೃತೇ ನ ವೈ ತಥಾ ಚೇತನಯಾ ಬಹಿಷ್ಕೃತೇ ಹುತಾಶನೆ ಪಾರಮಹಂಸ ಪರ್ಯಗುಃ ಹುತಾಶನೆ ಪಾರಮಹಂಸ ಪರ್ಯಗುಃ. ಪಡಿಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಹುತಂ ಯನ್ಮುಖೈಜ್ಯನಾಮಭಿಃ ನ ವೈ ತಥಾ ಚೇತನಯಾ ಬಹಿಷ್ಕೃತೇ ಹುತಾಶನೆ ಪಾರಮಹಂಸ ಪರ್ಯಗುಃ ಅಶ್ನಾತ್ಯನಂತಃ ಖಲು ತತ್ವಕೋವಿದೈಃ ಶ್ರದ್ಧಾಹುತಂ ಯನ್ಮುಖೈಜ್ಯನಾಮಭಿಃ ನ ವೈ ತಥಾ ಚೇತನಯಾ ಬಹಿಷ್ಕೃತೇ ಹುತಾಶನೆ ಪಾರಮಹಂಸ ಪರ್ಯಗು. ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಶ್ನಾತ್ಯನಂತ ಖಲು ತತ್ವಕೋವಿದೈ ಶ್ರದ್ಧಾಹುತಂ ಯನ್ಮುಖೈಜ್ಯನಾಮಭಿಃ ನ ವೈ ತಥಾ ಚೇತನಯಾ ಬಹಿಷ್ಕೃತೇ ಹುತಾಶನೆ ಪಾರಮಹಂಸ ಪರ್ಯಗು. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅಶ್ನಾತಿ ಖಾತಾ ಹೈ, ಅನಂತಃ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್, ಖಲು ತೋ ಭಿ ತತ್ವಕೋವಿದೈಃ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಕೋ ಜಾನನೆ ವಾಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುತಂ अग्नि में आहुतियां देना। यत मुखे, जिस मुख जिसका मुख इज्जनाम भी विभिन्न देवताओं के नाम से न कभी नहीं वही निश्चय ही तथा उसी तरह चेतनया जीवनी शक्ति से बहिष्कृते विलक किया जाकर हुताशने यज्ञग्नि में पारमहंस भक्तों का पर्यगुह कभी भी बाहर नहीं जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यद्यपि श्री भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अर्पित हवियों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितना कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं होती। पीछे दोहराएंगे, यद्यपि श्री भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अर्पित हवियों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितना कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति नहीं त्यागनी नहीं होती। तात्पर्य, वैदिक आदेशों के अनुसार अग्नि यज्ञ विभिन्न देवताओं के नामों पर श्री भगवान को भोजन प्रदान करने के लिए किया जाता है। अग्नि यज्ञ करते समय मंत्रों में स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है, यथा इंद्राय स्वाहा, आदित्याय स्वाहा। ये मंत्र विभिन्न देवों के नाम पर श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए उच्चरित किए जाते हैं, क्योंकि भगवान का कथन है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ताः। न मैं वैकुंठ में हूँ, न योगियों के हृदय में, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं की महिमा का गान करते हैं। यह समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। अग्नि जीव शून्य है, किंतु भक्त तथा ब्राह्मण परमेश्वर के सजीव प्रतिनिधि हैं, अतः ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खिलाने का अर्थ है प्रत्यक्ष श्री भगवान को खिलाना। अतः यह निष्कर्ष निकला कि अग्नि में आहुति डालने की अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मण तथा वैष्णवों को भोजन दे, क्योंकि यह विधि अग्नि यज्ञ की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण अद्वैत प्रभु ने प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध उत्सव किया तो पहले उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाकर उन्हें भोजन दिया। यह प्रथा है कि श्राद्ध कर्म के बाद किसी उच्च ब्राह्मण को भोजन दिया जाए, किंतु अद्वैत प्रभु ने सबसे पहले हरिदास ठाकुर को भोजन दिया जिनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। अतः हरिदास ठाकुर ने अद्वैत प्रभु से पूछा कि वे ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं जिससे ब्राह्मण समाज में उनकी स्थिति बिगड़ जाए। अद्वैत प्रभु ने उत्तर दिया कि हरिदास ठाकुर को भोजन देकर वे लाखों उच्च कोटि के ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं। वे इस बात के लिए किसी भी ब्राह्मण से बात करने के लिए तैयार थे और यह सिद्ध करना चाहते थे कि हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त को भोजन देकर वे उतना ही आशीष प्राप्त करते हैं जितना कि हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से। यज्ञ करते समय लोग आहुति डालते हैं, किंतु यदि वैष्णवों को ये आहुतियाँ दी जाएँ तो निश्चय ही वे अधिक प्रभावशाली होंगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिदिति शतां तमुन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। सर्वशास्त्राब्दिपीयूष सर्वभेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। मदेक बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायनति नीचोच्चता कर हा न मुंच कदाचिन्मां प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुर। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वको विदै श्रद्धाहुतं यन्मुखैर्जनामभिः न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस पर्यगुः। यद्यपि श्री भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अर्पित हवियों को खाते हैं किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितना कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं होती। यह श्लोक प्रथु महाराज के द्वारा कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से या किसी साधु के मुख से ही भगवान किसी भी भेंट को स्वीकार करने में उतनी जितनी रुचि लेते हैं उतनी अग्नि में डालने पर ग्रहण नहीं करते। भगवान के दो मुख हैं, गौण मुख। एक तो भगवान का जो स्वरूपगत मुख है वो तो है ही, उसके अतिरिक्त भगवान के दो मुख और हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। ये दोनों गौण मुख हैं भगवान के, मुख्य मुख नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रथु महाराज कह रहे हैं कि जितना भगवान किसी ब्राह्मण को यदि आप खिलाएंगे तो उससे भगवान शीघ्रातिशीघ्र ग्रहण करेंगे। डायरेक्ट यदि अग्नि अग्निर्वयी ब्रह्मण मुखम कहते हैं कि ब्रह्म का मुख है अग्नि, वाचर वाचर बनने मुखम, कि जो अग्नि है भगवान का मुख है, ऐसा वेदों में भागवत के दूसरे स्कंद में भी है और भी अन्यत्र बहुत सारे स्थानों में है कि अग्नि ब्राह्मण दोनों मुख हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कहते हैं कि नवई तथा चेतनया बहिष्कृते, चेतनया बहिष्कृते मतलब जिसमें चेतना ही नहीं है, अग्नि में कोई चेतना नहीं होती है, तो उसमें यदि आप आहुति करेंगे तो वो बेकार भी जा सकती है। उसके कुछ फल हैं यदि यज्ञ के माध्यम से करेंगे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति है, लेकिन फिर भी वो भगवान से उसका साक्षात संबंध नहीं होता है। अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं कर्मकांड के मंत्रों के द्वारा, उनसे व्यक्ति का स्वसुख की इच्छा होती है, अपने सुख की कामना है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए व्यक्ति वहाँ पर आहुति देता है, यज्ञ करता है ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर यही श्लोक ध्यान दीजिए, यही श्लोक भागवत के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 8वें में भी भगवान ने इस बात को जो यहाँ पर प्रथु महाराज कह रहे हैं उसको स्वयं स्वीकारा। भगवान वहाँ पर सनत कुमारों कहते हैं कि नाहम तथादमी यजमान हविर विताने, कहते हैं कि जिस प्रकार से नाहम तथादमी हविर यजमान हविर विताने श्चोतत घृत प्लुत मदन हुतभुंग मुखेना, हुतभुक मतलब अग्नि, वहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैं उस प्रकार से नहीं खाता कि अग्नि में कोई डाल देगा तो मेरा मुख है अग्नि तो मेरे में चला जाएगा, बोलते नाहम तथा आदमी वो हुतभुंग मुखेना, हुतभुक मतलब अग्नि, तो अग्नि के मुख से मैं नहीं खाता। कहते हैं कि यद ब्राह्मणस्य, कहते हैं कि जो ब्राह्मण के, यद ब्राह्मणस्य मुखतः शरतोनुघासम तुष्टस्य अव्यवहितैर स्वकर्म निज स्वकर्म पाकई, ऐसा कुछ करके भगवान बोलते हैं वहाँ पर कि जो संतुष्ट ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने समस्त कर्म फलों को मुझ में अर्पण कर दिया है, ऐसे ब्राह्मणों के मुख में डाला जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी तो उनकी सेवा से मैं सेवा प्राप्त कर लूँगा, मैं अपनी सेवा समझूँगा। तो इस जगत में और स्पेशल भारतवर्ष में ब्राह्मणों की बहुत वैल्यू है और शास्त्रों में सर्वत्र ब्राह्मणों को सबसे मुख्य बोला गया है। चत्वारा वर्णास तेसाम ब्राह्मण ये प्रधाना, वज्र सूची को उपनिषद में लिखा है कि चार वर्ण है लेकिन चारों वर्णों में ब्राह्मण ही एकमात्र प्रधान है। ब्राह्मण की महिमा भागवत में 3-4 स्थानों पर है, वैसे तो सब जगह है कहीं ना कहीं, लेकिन भागवत के 11वें स्कंद में भी है, 10वें में भी है कि ब्राह्मण ऐसी चीज है कि इसकी उपासना डेली करना चाहिए। भगवान उद्धव से कहते हैं 11वें स्कंद के 17वें अध्याय में, कहते हैं कि अग्न्यार्क अग्नि अर्क और विप्र गो विप्र गाय और ब्राह्मण अवृद्ध और देवता, इनको डेली ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारी के धर्म में वहां पर वर्णन करते हैं कि प्रतिदिन इनकी उपासना करना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का अपमान कभी भी किसी अवस्था में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण का अपमान हो गया तो वो भगवान के अपमान के समान है, क्योंकि भगवान का मुख है तो किसी के दे दिए गाल में चांटा तो वो चांटा देने के समान ही समझो उसको। लेकिन शास्त्रों में बहुत सारे विवाद भी हैं कि कौन सा ब्राह्मण के मुख में डालने से भगवान ग्रहण करते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, दारूखोर भी हैं, जुआ सट्टा और भी जितने भी व्यभिचार करने वाले हैं, तो क्या उनके मुख में डालने से क्या भगवान के मुख में जाएगा? तो इन प्रश्नों के लिए हमको थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि ये वर्ण है क्या चीज। कल्प के आदि समय भागवत के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में वहां पर भगवान कहते हैं कि आदौ कृत युगे वर्णों निर्णाम हंसो इति स्मृता, पहले चार वर्ण नहीं थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं थे, एक ही वर्ण था और उसका नाम था हंस। 11, 17, 10 में भगवान कहते हैं कि आदौ कृतयोगे, कृतयोगे माने कल्प के आदि में, जो सतयुग था, कल्प का जो आदि पहला कल्प था ब्रह्मा जी का, उसमें जो सतयुग था उसमें कहते हैं कि हंस केवल एकमात्र हंस था, उस जाति का नाम था हंस। कहते हैं कृतकृत्या प्रजा जात्या, कृतकृत्य थे वो भजन करके भगवान का, बहुत आनंद में थे, इसलिए उस युग का नाम पड़ गया कृतयुग, इसलिए सतयुग को नाम देते हैं कृतयुग भी कहते हैं। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये बाद में इनका जन्म हुआ, जब आगे जाकर के त्रेता युग में भगवान के हृदय से वेदत्रयी शुक्ल यजुर् और सामवेद जब निकले, उसके पश्चात मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय और उधर से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ, बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले केवल एक ही जाति थी। और उन जातियों का अलग अलग विश्लेषण है कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सामान्यतया जब दीक्षा होती है तो हम लोग जब जनेऊ धारण कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हम सब ब्राह्मण हो गए, लेकिन वास्तविकता में ब्राह्मण है कौन? केवल कहते हैं कि ब्रह्म तत्व न जानाति ब्रह्मसूत्रेण न ब्रह्मसूत्रेण गर्भिता, कि ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, लेकिन वो ब्रह्म सूत्र से जनेऊ धारण करने मात्र से अपने आप को ब्राह्मण समझने लगता है, उसी में गर्वित हो जाता है, अब तो मैं सबसे बड़ा हो गया, और ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म तत्व को अच्छे से जानता है, तो इस विषय में कि कौन ब्राह्मण है इसका विचार किया गया है। वज्र सूचक उपनिषद में लिखा है कि किम वा, उसमें लिखा है कि ब्राह्मणो नाम किम, माने ब्राह्मण क्या है, कहते किसको है, क्योंकि ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण तो बनने सब चाहते, बिना ब्राह्मण बने कोई वैष्णव नहीं बन सकता है, और कई जगह ऐसा है कि ब्राह्मण ही वैष्णव है, और कई जगह भागवत में ही ब्राह्मण अलग वैष्णव अलग, जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, उसमें भी जो उत्तम अधिकारी वैष्णव वो केवल तिलक धारण करने वाला नहीं, उसका पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे प्रचलन में है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं उपनिषद के अनुसार बतला रहा हूँ, वहाँ पर लिखा है एक क्रम से कि किम जीवा, पहले पूछा कि क्या ब्राह्मण कौन है, तो किम जीवा, किम देहा, किम जाति ही, किम ज्ञानम, किम कर्म और किम स्वभाव, ए किम धार्मिक, छह चीज पूछा। कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है, क्या यह जीव ब्राह्मण है, क्या यह देह ब्राह्मण है, क्या कोई जाति ब्राह्मण है, क्या कोई कर्म ज्ञान ब्राह्मण है, क्या कोई कर्म ब्राह्मण है, या फिर क्या कोई धार्मिक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है कौन कि जिसके मुख में डालने सीधे भगवान के पास जाता है, वो है क्या? तो उपनिषद में एक लाइन से, छोटा उपनिषद है, तो वहां पर वर्णन किया कि कौन है, तो एक एक का निषेध किया। कहते हैं कि जीवो ब्राह्मण स्यात् चेदना, जीव ब्राह्मण है ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, जीव ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता? तो बोलते हैं कि जीव ब्राह्मण इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जीव की एक रूपता है, अपने कर्म के अनुसार जीव अलग अलग देहों को प्राप्त करता है, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, अलग अलग भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करता है, और उसकी एक रूपता बनी रहती है, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं हो सकता जीव, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार वो अलग अलग योनियों में जाता है, तो फिक्स नहीं होगी ब्राह्मण ही है। तो फिर कहते हैं किम देह ब्राह्मण, तो क्या देह ब्राह्मण है शरीर? तो बोलते हैं नहीं, देह ब्राह्मण नहीं है। क्यों? यदि देह को कहेंगे कि देह ब्राह्मण है तो और भी दोष आएंगे। दोष क्या आएंगे कि आपको पता है कि जरा और मरण, उसके अतिरिक्त धर्म और अधर्म, इनकी जो साम्यता है सुख दुखों की, इसको निश्चित करने के लिए फिक्स नहीं है कि श्वेत वर्ण वाला ब्राह्मण ही है ना, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय ही है, और जो श्याम वर्ण वाला थोड़ा हल्का श्याम वो वैसे ही है, और पूर्णतया कृष्ण वर्ण काला वर्ण वाला शूद्र ही है, ऐसा निश्चित है क्या देह में कि भाई इस व्यक्ति को जरा मरण नहीं होता है, इसका देह सफेद रंग का है और इस व्यक्ति को बुखार और सर्दी खांसी नहीं आती इसलिए ब्राह्मण है, ऐसा कोई नियम फिक्स है? नहीं है, क्योंकि हम लोग काले ब्राह्मण भी देखते हैं, गोरे भी देखते हैं, सफेद भी देखते हैं, हर प्रकार के देखते हैं, और शूद्रों में भी काले सफेद, तो वर्ण ब्राह्मण नहीं है, और देह से वर्ण को लेते हैं, तो इसलिए देह ब्राह्मण नहीं है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, देह से ही ब्राह्मणत्व तो सिद्ध होता है, ऐसा भी कहते हैं। तो आगे और बातें आएंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि देह ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि देह में कोई रंग फिक्स नहीं है कि यही रंग वाला ही ब्राह्मण है, कोई नियम वहां पर फिक्स नहीं है कि सफेद रंग वाला ब्राह्मण ही है, क्योंकि और भी रंग देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे कहते हैं, तो किम जाति वर्ण ब्राह्मण, तो क्या जाति ब्राह्मण है कोई? तो बोलते हैं नहीं, मनुष्यों के अलावा भी अलग अलग ऋषियों का अलग अलग स्थानों से जन्म होता देखा गया है। जैसे वाल्मीकि ऋषि का कहां से जन्म हुआ? वाल्मीक से। जाम्बूक ऋषि का जाम्बूक से। मृगी से ऋषिशृंग हुए, अगस्त्या कुंभ संभवः, अमरकोश में लिखा है कि अगस्त्या कुंभ संभवः, जो अगस्त ऋषि हैं कुंभ से, घड़े से पैदा हुआ है। घड़ा जीव है कि निर्जीव है? अचेतन है, तो उससे भी ऋषि का जन्म हो गया वहां पर। वो भले ही वीर किसी भी चेतन व्यक्ति का रहा हो, लेकिन जन्म का तो संयोग बना, वो घड़ा क्षेत्र बना उसको उत्पन्न करने के लिए। खरगोश के पीठ से गौतम ऋषि का जन्म हुआ। मछुआरे की कन्या से वेदव्यास जी का जन्म हुआ। तो जाति ब्राह्मण नहीं है, यदि होता तो एक ही जाति में सब पैदा होते, सब ब्राह्मण कहलाए, सारे ऋषि सब ब्राह्मण कोटि के हैं। कोई गौतम ऋषि को क्षत्रिय नहीं कहता, ना शूद्र कहता, अगस्त ऋषि कोई क्षत्रिय शूद्र वैसे में नहीं गिना जाता, सब ब्राह्मण है। तो जाति ब्राह्मण नहीं है, यदि जाति ब्राह्मण होती तो इतने सारे ऋषि जो अलग अलग जगह से स्थान से पैदा हो गए तो भी उनको ब्राह्मण नहीं गिना जाता है, यदि जाति ब्राह्मण होती। तो इसमें से वो आगे कहते हैं कि जाति इसलिए ब्राह्मण नहीं है। एक और कारण बोले कि यदि देह ब्राह्मण में कहा कि यदि देह ब्राह्मण होती तो जो पुत्र आदि आहुति पिता को जलाते हैं तो उसमें ब्रह्म हत्या पाप लगता, यदि देह ब्राह्मण होती तो, देह को जलाने में, लेकिन नहीं लगता। तो न तो जीव ब्राह्मण है, न देह ब्राह्मण है, न जाति ब्राह्मण है। तो बचा का ज्ञान कर्म और धार्मिक। तो क्या कोई कर्म ब्राह्मण है? क्या कोई कर्म ब्राह्मण नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि कर्म बदलते रहते हैं, कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, और जन्म के अनुसार फिर वैसे आदमी अपने अपने कर्म करने लगता है, फिर जन्म होता है। तो कर्म परिवर्तित है, संचित प्रारब्ध जो होते हैं परिवर्तित होते रहते हैं। किसी का अभी कोई प्रारब्ध है और कुछ इकट्ठा, फिर वो अलग हो जाएगा। तो कर्म को ब्राह्मण नहीं कहेंगे कि कर्म ही ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि कर्म बदलने वाले हैं। तो फिर क्या ज्ञान ब्राह्मण है? तो बोलते नहीं, ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ज्ञान क्षत्रिय राजाओं में भी देखा गया है। विदुर जी आदि भी इतने बड़े ज्ञानी थे। धृतराष्ट्र ने विदुर से प्रश्न किया कि नहीं मृत्यु के विषय में, लेकिन भले उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बोला कि जाओ सनत सुजात से जाकर के पूछो। तो वो भी ज्ञानी थे, और भी बहुत सारे ऋषि लोग हुए जो ज्ञानी थे, और विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मणों में बाद में गिनती हुई, ब्राह्मण बने। और भी बहुत सारे ऋषि हैं जो क्षत्रिय राजा थे, अब प्रतु महाराज जी हैं। संपूर्ण पुराणों का श्रवण किया है तो ज्ञान तो हो ही गया होगा, तो इसलिए वो भी ज्ञानी हैं। और भी राजा ज्ञानी हुए हैं, ध्रुव आदि सब ज्ञानी में गिनती होती है, और भी बहुत सारे राजा हैं, क्षत्रिय हैं लेकिन ज्ञानी हैं। तो इसलिए ज्ञान ब्राह्मण नहीं है। तो फिर क्या है? तो क्या धार्मिक ब्राह्मण है? तो बोलते हैं नहीं, न तो ज्ञान ब्राह्मण है, न तो कर्म ब्राह्मण है, और ना तो धार्मिक ब्राह्मण है, क्योंकि बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं ने बहुत सारा दान दिया है, हजारों हजारों लाखों लाखों गौओं का दान दिया है। धार्मिक किसको कहते हैं? जो दान दया धर्म ये सब करते रहते हैं, इसी को तो कहते हैं यज्ञ दान आदि इष्टापूर्त करते हैं, वो धार्मिक। तो बहुत सारे क्षत्रियों ने बहुत सारा दान दिया है, तो इसलिए वो ब्राह्मण हो जाएं। तो बोलते हैं नहीं, वो भी ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कोई धार्मिक व्यक्ति कहे कि धार्मिक है इसलिए ब्राह्मण है तो नहीं। तो फिर ब्राह्मण है कौन? तो फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को, भगवान को सर्वत्र एक रूप में, अनंत रूप में और भी विविध प्रकार से भगवत दर्शन करता है, अखंड रूप से, कहते हैं कि सम दम आदि जो गुण हैं उनसे जो युक्त व्यक्ति है, सम दम तितिक्षा शांति राजवम, ये जितने भी गुण हैं वो जिसमें हैं, कहते हैं वो ब्राह्मण हैं। अच्छा, अब इस पर चलेंगे। इतना तो समझ में आ गया कि छह चीजें बताया उपनिषद में, वेद कहता है कि क्या क्या, जीव, देह, जाति, ज्ञान, कर्म और धार्मिक, ये छह चीजें ब्राह्मण नहीं है। तो जो देह ब्राह्मण है वो हो ही नहीं सकता है। अब इसको आगे, तो फिर ब्राह्मण है क्या, उस पर विचार करते हैं। और वैसे भी इसीलिए हम लोगों को ब्राह्मण बनने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए, मतलब जाति ब्राह्मण, हम लोग अपने आप को कई बार ऐसा होता है कि जनेऊ लेने के बाद दीक्षा हो जाती है ब्राह्मण दीक्षा, तो उसके बाद जो जाति ब्राह्मण है उनका अपमान करने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं गलती करना चाहिए, क्योंकि वो बदलता नहीं है। उसको यदि ऐसा करेंगे तो आप पर दोष आ जाएगा कि आप अपने आप को समझ लिए ब्राह्मण। और महाभारत में लिखा है कि नचैतत विद्मा ब्राह्मणो अब्राह्मणाहा। ब्राह्मण लोग कहते हैं, यजमान ब्राह्मण कहते हैं, हम ब्राह्मण है कि नहीं है हमको नहीं पता। तो ब्राह्मण का ज्ञान करने के लिए कौन ब्राह्मण है, एक छोटी सी कथा छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे खंड में दी हुई है, चौथे मंत्र में ही है। वहां पर आपने सुना होगा जाबाल सत्यकाम, सत्यकामो जाबाला। सत्यकाम नाम का एक था, वो गौतम ऋषि के पास में गया, कहा कि मुझे पढ़ना है, ज्ञान चाहिए। तो गौतम ऋषि ने उससे पूछा कि किम गोत्रोसी, तुम कौन से गोत्र के हो? तो उसने कहा, अरे गोत्र क्या चीज है तो हमको पता ही नहीं, मैंने तो आज तक सुना ही नहीं गोत्र के विषय में। तो ठीक है, मैं अपनी माँ से पूछ करके आ रहा हूँ क्या गोत्र है मेरा। जब अपनी माँ के पास गया तो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा गोत्र क्या है, तो उसकी माँ कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा गोत्र क्या है। क्यों? कहा कि जब मैं युवा अवस्था में थी तो बहुतों की सेवा करती थी, तो सेवा करते करते ही तुम्हारा जन्म हो गया, तो इतनी बात, इसलिए मैं जावाल और तुम सत्यकाम, तो तुम सत्यकाम जावाल या जावाल सत्यकाम। तो इसलिए एक काम करो, तुम जाओ और अपने गुरु को बता देना कि मुझे पता नहीं है। तो बिल्कुल जैसा उसकी माँ ने बोला यथा, उसी प्रकार से जाकर के वो जाकर के उसको बोल दिया गुरुजी को, कहा कि पूरी कथा बता दिया कि मेरी माँ ने ऐसे ऐसे कहा है। तब गौतम ऋषि ने निश्चित किया कि तुम ब्राह्मणों सी, तुम ब्राह्मण हो। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य कहा। सत्यम, सत्य बोलना ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है। अब हम लोग इसीलिए दीक्षा के बाद भी स्वभाव तो हमारे दिन में 36 बार बदलते हैं, 24 घंटे में कितने बार स्वभाव बदलता है। तो केवल स्वभाव से निश्चित कर देना कि ये ब्राह्मण है तो थोड़ी देर में कुछ और भी देखा जाता है, झूठ भी देखते हैं, कई लोग बोलते रहते हैं, है कि नहीं। अन्य स्वभाव क्षत्रियों को भाव भी आता है, शासन करना, डोमिनेट करना, सब आता है कि नहीं। और वैश्यवृत्ति भी कभी कभी बिजनेस दिमाग लगाता है व्यक्ति। तो ये सब स्वभाव जन्म से सिद्ध होना चाहिए। इसलिए महाभारत की नीलकंठी टीका है एक, तो वन पर्व के 180वें अध्याय में 23 से 26 श्लोक के बीच में, वहां पर नीलकंठ जी ने, बहुत प्राचीन है वो, उन्होंने निश्चित किया कि जिसमें यदि शूद्रेपि
शूद्र में भी यदि ब्राह्मण के गुण दिखाई दें तो उसको ब्राह्मण निश्चित मानना चाहिए, अब ब्राह्मण में भी यदि शूद्र के गुण दिखाई दे तो उसको शूद्र मानना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा, उन्होंने वहां पर टीका में लिखा है कि ये जो, क्योंकि शूद्र में कभी भी समो दमस तपा शौचम शांतिर आर्जवम, ये सारे जो गुण हैं वो कभी दिखाई नहीं देंगे, और ब्राह्मण जो होगा उसमें शूद्र के जो गुण हैं वो सब नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोल दिया जिसमें है स्वभावता है, ये नहीं कि क्षण क्षण में बदलने वाला, गुण कर्म स्वभाव का मतलब ये नहीं है। स्वेस्वे अधिकारी या निष्ठा सा गुण परिकीर्तता, अपने अपने अधिकार के अनुसार जो गुण है उसी, जो अधिकार है उसी को गुण कहा गया भागवत में 11:21-2 में और 20वें अध्याय में भी 11 के कहा है कि वही गुण है। तो ऐसा ही स्वभाव परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए किसी भी ब्राह्मण का, फिक्स है, सत्य बोलता ब्राह्मण है, अब ये कभी झूठ नहीं बोले किसी भी अवस्था में। इसीलिए 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में जहां पर ब्राह्मणों के गुण बताए वहां पर कहा कि ब्राह्मण को कभी भी वाणिज्य नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है, चाहे जितनी भी विपत्ति आ जाए, और नीचों की सेवा नहीं करना है किसी भी अवस्था में। तो जो ऐसा करता है फिर अब्राह्मण हो जाएगा, इसलिए निश्चित किया गया कि समो दम, सम माने भगवान ने भागवत के 11:19-38 में कहा है कि समो बुद्धेर, समो मनिष्ठा बुद्धेर, माने सम क्या है, मेरे में निष्ठ हो जाना, मेरे में अपनी बुद्धि को लगा देना, सम है। दम क्या है, इंद्रियों को निग्रह कर लेना, कंट्रोल करना। तप क्या है, कामस त्यागस तपः, कामना का त्याग करना तप है। एकादशी आदि उपवास और भी उपवास, भूखे रहना, वो सब ठीक है इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, लेकिन मुख्य जो तप है वो भगवान ने कहा कि कामस त्यागस तपः, कामनाओं का, काम का त्याग करना ही मुख्य तप है। वो यदि नहीं त्यागा, खूब उपवास रह रहे हैं और कामना है उपवास के माध्यम से कुछ अन्य फल की, तो बेकार हो गई वो तपस्या, वो राजसी तामसी तपस्या में आएगी। इसलिए कामनाओं का त्याग करना ही मुख्य तप है। शांति, क्षमा भाव होना, सरलता होना। उसके बाद ये श्लोक दो जगह आया है इसी प्रकार, थोड़ा नीचे की लाइन अलग है। एक तो 11:17 में 20:21 में, और उसके बाद 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में, 7वें स्कंद के 20वां 21वां है, वहां पर 17वें अध्याय में दूसरा है, 16वां नंबर है श्लोक 11वें स्कंद में। तो वहां पर कहते हैं कि दया अच्युतात्मत्वम, और दया भी होना चाहिए जीवों के प्रति, और अच्युतात्मत्व माने भगवान का भक्त होना चाहिए, उसको कहते हैं कि ये ब्रह्म की प्रकृति है, ब्राह्मण की प्रकृति है, ब्राह्मण का गुण है, स्वभाव है, ये नेचुरल होना चाहिए। द्विज सब लोग हो सकते हैं, दूसरा संस्कार हो सकता है, द्विज हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो यही है जिसके अंदर ये सब गुण पक्के हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं कभी भी, तो वो ही ब्राह्मण है, और उसके मुख में डाला हुआ जो भी अनुघास है वो भगवान ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये सारे गुण बताए, कि इसलिए गुण भी बता दिया, कोई ये ना कहे कि जाति से फिक्स कर ले, या कहा कि जिसके अंदर है ये वो निश्चित कर लो। तो ये इसमें बहुत सारा विवाद चलता है बाहर लोगों में, बहुत सारे लोग बोलते हैं जन्मना ब्राह्मणो स्मृतः, कि जन्म से ही ब्राह्मण ब्राह्मण है। गर्गाचार्य को नंद बाबा ने कहा कि ब्राह्मणो जन्मना गुरु, है ना, कि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है, तो जन्म से ही उसको लेकर के बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन महाभारत में शल्य पर्व में और वन पर्व में, वहां पर भारद्वाज ऋषि से प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर में बोला, यही सब बातें बोली, कि जिसमें जो गुण दिखता है बस वो वही है, लेकिन भक्तों को जहां पर 11:26 में वहां पर यह कहा गया कि ब्राह्मणों के जो गुण हैं, बताया कि इज्जा ध्यान माने पूजा अध्ययन आदि करना, लेकिन ये सबके हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब में होना चाहिए, लेकिन कहा कि प्रतिग्रहण करना, दान लेना संकल्प करा करके और अध्यापन कराना ब्राह्मणस्य इव, केवल ब्राह्मण के हैं, ऐसा कहा। इसलिए जो दूसरी दीक्षा भी लेते हैं उन लोगों को चाहिए कि किसी का दान संकल्प के साथ ग्रहण ना करें, वो जिसकी परंपरा में जो चला आ रहा है उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए। जीव गोस्वामी आदियों का मत है कि भक्ति करने से, नाम लेने से, अहो स्वपचोत गरीयान ये जीवाग्रह वर्तते नाम तुभ्यम तपस्ते पुष्णुर आर्य ब्रह्मानुचूर नाम गृणंती, थे जो कुंती देवभूति बोलती हैं कि जो भगवान का नाम लिया वो सारी तपस्या कर लिया और सद्यः सवनाय कल्पते, वो तो यज्ञ के तुल्य हो जाता है। तो वहां पर गोस्वामियों ने लिखा है कि यज्ञ के तुल्य का तात्पर्य नहीं समझना चाहिए कि यज्ञ करने लगेगा, क्योंकि इस शिष्टाचार को नहीं तोड़ना चाहिए। संसार में चल रहा है, जाति ब्राह्मण कर रहे हैं तो उनको कर देना चाहिए। वैष्णवों का तो केवल भक्ति है, वैसे ही वर्णाश्रम के अंदर है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम। वर्णाश्रम धर्म जो है भक्ति धर्म से नीचे है, तो क्यों ना केवल अनन्य भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हजारों हजारों ब्राह्मणों की अपेक्षा जो सत्रयाजी ब्राह्मण है, जो यज्ञ करता है वो श्रेष्ठ है, उसकी अपेक्षा जो ब्राह्मण ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है, उसकी अपेक्षा जो तत्व को जानता है वो श्रेष्ठ है, जो जान करके भी जो साक्षात्कार किए हुए हैं वो श्रेष्ठ है। उनमें भी जो एकांतिक भक्त है, केवल एकमात्र कृष्ण ही जिसके सेव्य हैं और कुछ भी कामना नहीं है, केवल कृष्ण को ही सुखी करने की इच्छा है, वो एकांतिक भक्त वो श्रेष्ठ है। तो वो बनने का प्रयास करना है कि यहाँ वर्णाश्रम में वापस जाना है। तो इसलिए किसी की भी, आप चाहे वो ब्राह्मण कितना भी घृणित कार्य करें, उससे बैर नहीं करना चाहिए। अब ऐसे ही भागवत में मना किया है 12:6-34 में और 11:18-21 में कहा गया है कि न चेमम देहम आश्रित्य वैरम कुर्यात केनचित, किसी का अपमान न करे और इस देह को आश्रय बना करके, इस देह से अभिमान में हो करके किसी भी व्यक्ति का अपमान न करे। बाकी ब्राह्मण आदियों के तो कम से कम सत्व तो है उसके वीर में, गुणों में भी यदि देखेंगे तो सत्व गुण का शरीर होता है, शरीर में तो सत्व है ही, तो कई बार उसको सत्व गुण शरीर के अनुसार लेकर के श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ऋषियों का जो आया हुआ है परंपरा इसके उद्देश्य लेकर के उसको श्रेष्ठ मानते हैं। भागवतम में कहा 11:7-11:35 में अंतिम श्लोक है, उसमें कहते हैं कि यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसाम वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्देशेत। वहां पर नारद जी युधिष्ठिर महाराज जो कहते हैं कि जिसका जो लक्षण मैंने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, यदि ये लक्षण किसी में किसी का लक्षण दिख जाए तो उसको वही मान करके उसकी उपासना करो, उसकी सेवा करो। अब ऐसे भी जो भक्त हैं अलग अलग वर्णों के, यदि वो ब्राह्मण दीक्षा ले भी लिए, कुछ भी ले लिए, तो यहाँ पर अर्चा विग्रह सेवा के लिए जो निषेध है वेदों में पुराणों में कि जो जाति ब्राह्मण है वही केवल पूजा करेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूजा होती है वैष्णवों के मध्य में वो भक्ति के अंग में लिया जाता है, और भक्ति का जो है वो वर्णाश्रम के अंदर नहीं आती है, भक्ति के अंग में है अर्चन, है ना। तो भक्ति में सर्वेशाम अधिकार, कहते हैं कि भक्ति में सबका अधिकार है, तो फिर वहां पर जो यदि कोई भक्त अर्चन करता है तो दोषपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि भक्ति में सबका अधिकार। जब भक्ति में सबका अधिकार हो गया सारे वर्णों का, तो फिर अर्चन भक्ति का अंग है, वो कर सकता है। बस इतना याद रखे कि दान आदि ग्रहण भक्ति के रूप में करें, इसलिए उसके लिए पुराण की विधि भी है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग विवाद है, लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जाति मात्र से ग्रहण नहीं करना चाहिए, व्यवहार समाधि भी रेवा समाधि भी रेवा ग्राह्यम न तो जाति मात्रात, कहते हैं कि समाधि जो गुण है सम दम तितिक्षा आदि, इनसे ग्रहण करना चाहिए किसी के वर्ण को, न कि जाति मात्र, श्रीधर स्वामी का ये मत है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसीलिए। और भक्तों के पक्ष में ये याद रखना चाहिए कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने 7/15/68 में कहा कि यूयम ही नृपदेव दुष्टदात आपद गणाद उत्तरता आत्मनः प्रभो। कहते हैं कि यत पाद पंके रूह सेवया भवान भवान आहारसी निर्जित दिग्गज कतून। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं कि तुमने वर्णाश्रम धर्म का पालन करके इस संसार को नहीं जीता है। कहते हैं कि तुमने जितने भी कामना पूर्ति किया यज्ञ आदि किया है और जो उत्तरतः जितना भी तुम उत्तर हुए हो आगे बढ़े हो, कहते हैं कि यत पाद पंके रूह सेवया भगवान की चरणों की सेवा करके, न कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करके, ऐसा स्पष्ट नारद जी कहते हैं। तो यत पाद पंके रूह, इसलिए भक्तों को केवल एकमात्र भक्ति वाले जो धर्म है उस पर विचार करना चाहिए, इसमें अपना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आना किसी से विवाद करना चाहिए, और इस विषय पर बहुत विवाद चलता है बाहर लोगों में, ब्राह्मणों में, कई वैष्णवों में, कि कोई जाति से ब्राह्मण तो कहते नहीं, कर्म से ब्राह्मण तो कोई बोलता है नहीं, धर्म से ब्राह्मण, सब अलग अलग बोलते हैं। हमको इस विवाद में नहीं पड़ना है, चाहे जाति से हो चाहे किसी से भी हो, वो है जिसका वो है उसमें करने दो। हमारा उद्देश्य तो कृष्ण की प्रीति है, क्योंकि ब्राह्मण आदि यदि गुणों को 12 गुणों से युक्त भी यदि कोई हो जाए अब भक्ति ना करे तो प्रहलाद महाराज को क्या बोले, स्वपचम वरिष्ठम, कहते कि मैं उसकी अपेक्षा तो जो कुत्ते खाने वाला है और वो भजन करे उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो अपने संपूर्ण कुल का अपने सहित उद्धार कर लेगा, और ये जो केवल जाति मात्र व्यक्ति है इन गुणों को लेकर के जो अभिमान कर रहा है वो तो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, लेकिन ये कुछ बातों को ध्यान रखने योग्य हैं। और यदि जो अपने आप को ब्राह्मण मानता है तो उसके लिए भी भागवत में भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात बोला, 11:17:42 में भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण से देहोयम, कहते हैं कि ब्राह्मण से देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कि जो ब्राह्मण का देह है, मान लो मान लिया जिसने अपने देह को ब्राह्मण, तो उसके लिए कहते हैं कि ब्राह्मण से देहोयम क्षुद्र कामाय न इष्यते, कि जो ब्राह्मण का देह है और जिसने दीक्षा लेकर अपने आप को ब्राह्मण मान लिया उसके लिए भी है, क्षुद्र काम के लिए नहीं है, दुनियादारी के प्रपंच के लिए नहीं है। कहते हैं कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय च, ब्राह्मण का देह कहते हैं कृच्छ्राय कष्ट के लिए, कष्ट माने भजन में कष्ट जो भी होने वाला उसको जबरदस्ती नहीं कष्ट करने के लिए, तो कहते हैं वो कष्ट का देह होता है। ब्राह्मण देखो बेचारे यज्ञ की अग्नि में बैठे रहते हैं, कितना धुआं खाते हैं, हम लोगों को कोई पैसा देके यदि जप करवाएगा कि प्रभु आप जप करो हम आपको देंगे इतना रुपया, नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ब्रह्म ब्राह्मण देहधारी उनको देकर कराएंगे तो खूब करेंगे, दिन भर बैठ करके मन लगा के। यहां पैसा देने पर भी नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि वीरगत हैं, वो आई हैं परंपरा से, खून में हैं। तो इसीलिए कृच्छ्राय तपसे, तपस्या करने के लिए ब्राह्मण का देह है। तो जो भी व्यक्ति अपने आप को मिथ्याभिमानी या अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं उनको इसको याद रखना चाहिए कि यदि मैं हूं तो फिर तपस्या करो, और दूसरे अन्य सर्व जितने भी कार्य हैं सब छोड़कर केवल भजन करना, बस तभी अनंत सुख की प्राप्ति होगी। छुल्ल सुखाए न, संसारिक थोड़े थोड़े सुखों के लिए प्रयास करना ब्राह्मण का नहीं है, ये दूसरे दूसरे जातियों के लिए वैश्य शूद्र क्षत्रिय है, उन लोगों की बहुत कामना है, ब्राह्मणों की कोई कामना नहीं, वो दूसरों के उपकार के लिए उसका देह है। तो जो भी ऐसा मानने वाले उनको ऐसा सोचना चाहिए। तो इसलिए भगवान भक्तों के मुख से, इसलिए प्रभुपाद ने साधु और ब्राह्मण जहां पर आया कि ब्राह्मण का मुख तो वहां साधु बोला, भक्तों को खिलाएंगे, क्योंकि भगवान बोलते कि मद पूजा अभ्यधिका, ए मद भक्त पूजा अभ्यधिका, भगवान ने कहा है 11:20-21 में वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए ब्राह्मण साधु जो भी भगवान के प्रतिनिधि करने वाले हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका ज्यादा श्रेष्ठता है। तो इस प्रकार से यही श्लोक का प्रभुपाद ने भी और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया कि हरिदास ठाकुर ने अपने पिता को पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, केवल हरिदास को। क्यों? नाम मात्र से वो पवित्र हो गए, इसलिए उनको बुलाकर खिलाया। बोला हजारों ब्राह्मणों को खिला दिया। तो यही यहां पर सिद्ध होता है कि इसमें आग्रह नहीं होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। बस अपने आप को खुद पहचान लो। मंदिर में भी अलग अलग सेवाएं हैं, तो कौन डोमिनेट करना चाहता है, कौन क्या करना है, उससे पता चलता है। कौन सत्ता में आना चाहता है तो उससे पता चलता है उसके स्वभाव का। उद्विज हो सकता है, जनेऊ लिया और कोई प्रेसिडेंटशिप में है तो उद्विज है, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण के क्या है, तप शासन करना, ये सब उसके धर्म में है ना, उसके स्वभाव में है। तो इसलिए उद्विज हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण तो केवल जो गुण है वो है, जिसमें पूर्णतया वही है। तो हमको ब्राह्मण के गुणों को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। अब ब्राह्मणों से भी जो बन गए, प्रभुपाद बोलते हैं कि विदाउट बिकमिंग अ ब्राह्मण नोबडी कैन बिकम अ वैष्णव। बिना ब्राह्मण बने वैष्णव नहीं बन सकता, क्योंकि ये पार करने, क्योंकि ब्राह्मण सत्वगुण में है, और सत्वगुण के बाद शुद्ध सत्व आता है जिसमें वैष्णव लोग स्थित रहते हैं। तो वो क्रम है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण फिर शुद्ध सत्व। तो इस प्रकार से इस विषय में तो बहुत सारी बातें हैं, वो होती रहेंगी। यहाँ पर जितना समय के अनुसार समझाने का मति थी मैंने समझा दिया। और भी बातें हैं जिसको करना है तो अलग से डिस्कस कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।